सबकी सहमति से मानव और नित्या की सगाई आज ही करने का फैसला लिया गया और शादी की डेट 20 दिन बाद वाले मुहूर्त पर फिक्स हो गई। पंडित जी के बताए अनुसार मिस्टर शेरगिल सगाई की तैयारियों में लग गए। शाम गहराने लगी थी। घर में ज्यादा शोर शराबा या तड़क भड़क नहीं थी, लेकिन फिर भी माहौल में एक अलग सी हलचल थी। सब कुछ जैसे जल्दबाजी में हो रहा था, फिर भी हर कोई इस दिन को नित्या और मानव के लिए स्पेशल और यादगार बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे। बीच में एक छोटी सी टेबल पर पंडित जी ने जल्दी जल्दी शगुन का सामान सजा दिया था, रोली, चावल, मिठाई और एक लाल कपड़े में रखा नारियल। यजमान, मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी से रस्म शुरू करते हैं, पंडित जी ने कहा। सबकी नजरें एक साथ मानव और नित्या पर टिक गईं। नित्या अब डिजाइनर गाउन में सजी हुई थी, चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर हल्की मुस्कान भी थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो बात नहीं थी जो मानव के दिल को परेशानी में भी सुकून से भर जाती थी। वहीं मानव की नज़र बार बार उसी पर जाकर ठहर रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, मुहूर्त भी शुरू हो गया था, रोके की रस्म शुरू हुई। नित्या के डैड मतलब मिस्टर शेरगिल ने मानव के माथे पर तिलक लगाया, उसके हाथ में मिठाई रखी और शगुन के तौर पर कुछ पैसे दिए। मानव के परिवार की तरफ से सिर्फ अनीता जी ही थीं। उन्होंने नित्या को चुनरी ओढ़ाई, उसकी गोद में नारियल और मिठाई रखी गई। अनीता जी ने नित्या के सर पर हाथ रखकर ढेरों आशीर्वाद दिए और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। आज उनका महीनों का इंतजार खत्म हुआ था, दिल की ख्वाहिश पूरी हुई थी और वो इतनी खुश थीं कि आंखों से खुशी के आंसू छलक आए थे। आई, आप रो क्यों रही हैं? नित्या आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगी। उसके माथे पर सिलवटें मौजूद थीं। वो हैरान भी थी और परेशान भी। ये तो खुशी के आंसू हैं बेटा, अनीता जी मुस्कुराई, फिर प्यार से उसके चेहरे को छूकर बोली, बहुत इंतजार करवाया आपने, अब बस जल्दी से हमेशा के लिए अपने घर आकर हमारे सोने आंगन को खुशियों से भर दीजिए। अपना घर, सोना आंगन, खुशियां, चंद मामूली से शब्द थे, लेकिन ये आम से शब्द उनकी जिंदगी में नित्या की अहमियत बता रहे थे। ये दिखा रहे थे कि वो दिल से उसे पहले ही अपना चुकी हैं। नित्या बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही, फिर बड़े ही प्यार से अपनी हथेली से उनकी भीगी आंखों को पोंछ दिया। आप रोइए मत, मैं जल्दी ही मानव से शादी करके घर आ जाऊंगी, फिर मनु मुझे रात को वहां रुकने से भी नहीं रोकेगा, लेट होने पर गुस्सा भी नहीं करेगा, जबरदस्ती मुझे उठाकर यहां भी नहीं लेकर आएगा, मुझे आपसे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, फिर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। नित्या की मासूमियत से कही बातें सुनकर अनीता जी की मुस्कुराहट बड़ी हो गई, वहीं मानव के होंठ के किनारे भी हल्के से मुड़ गए। अब से ये रिश्ता पक्का समझिए, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां तालियों की हल्की आवाज गूंज उठी। मानव ने एक नज़र फिर नित्या की तरफ डाली। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें उस मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थीं। पंडित जी, अब सगाई भी करवा दीजिए वरना मुहूर्त बीत जाएगा, मिस्टर शेरगिल ने कहा। अंगूठी भी आ गई है, उन्होंने इशारा किया और सर्वेंट तुरंत ही सर हिलाते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद वापस आया। अब उसके हाथ में फूलों से सजी चांदी की प्लेट थी, जिस पर दो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए थे और उनमें रखी रिंग्स दूर से ही चमक रही थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े, गंगा जल अंगूठियों पर छिड़का, फिर अंगूठी की प्लेट मानव और नित्या के पास लाई गई। मानव ने रिंग पकड़ी और नित्या की तरफ दूसरी हथेली बढ़ा दी। नित्या ने झिझकते हुए अपनी हथेली उसके हाथ पर रख दी, जिसे अपनी उंगलियों से थामते हुए मानव ने वो रिंग उसकी रिंग फिंगर में पहना दी। सबने खूब तालियां बजाई। मानव के बाद नित्या की बारी आई। उसने छल्ले जैसी रिंग ली और नज़र मानव की तरफ उठाई। मानव ने अपना हाथ उसके तरफ बढ़ा दिया। नित्या ने धड़कते दिल के साथ रिंग उसकी उंगली में सजा दी। एक बार फिर पूरा ड्राइंग रूम तालियों की आवाज से गूंज उठा। दोनों पर फूल बरसाए गए। दोनों ने तीनों बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी के भी पैर छुए। बारी बारी सबने उनका मुंह मीठा करवाया। कितनी जच रही है ये अंगूठी तुम्हारे हाथों में। जब तुम सबसे पहले हमारे घर आई थी, तभी मैंने ये अंगूठी बनवा ली थी। तुमने तब अपने बारे में सच नहीं बताया था। हमें तो यही लगा कि तुम्हारे परिवार वाले तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, तुम अपने घर नहीं जाना चाहती, और हमें तुम पसंद आ गई थी। हमने तभी सोच लिया था कि तुम्हारा लगन मानव से करवाकर तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने साथ ही रख लेंगे। रिश्ता जुड़ जाएगा तो लोग तुम्हारे हमारे घर में रहने पर सवाल नहीं उठा पाएंगे। तुम्हें एक परिवार मिल जाएगा और हमें बहू के रूप में तुम्हारी जैसी बेटी। अनीता जी ने प्यार से उसके गाल को छुआ और आत्मीयता से उसके माथे को चूम लिया। नित्या और मानव दोनों ही उनकी प्लानिंग से अनजान नहीं थे, इसीलिए नॉर्मल थे। वहीं दादाजी और मिस्टर शेरगिल ये जानकर थोड़े हैरान थे कि अनीता जी ने ना सिर्फ इतना सब सोचा हुआ था, बल्कि वो तो तैयारी भी शुरू कर चुकी थीं। नित्या अपनी रिंग फिंगर में मौजूद रिंग को देखने लगी। सबने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर मानव और नित्या को भी मिठाई खिलाकर ढेरों आशीर्वाद दिए। बस वो दोनों एक दूसरे को मिठाई नहीं खिला सके। इन्हीं सब में रात हो गई। काका, अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। पुत्र, डिनर का टाइम हो गया है, अब डिनर करके ही जाना। दादाजी की बात सुनकर अनीता जी थोड़ी परेशान हो गई और झिझकते हुए बोली, काका इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुत्र, बात जरूरत की नहीं है, खाना तो तुम्हें यहाँ भी खाना है और अपने घर जाकर भी खाना है। आज दोनों परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ा है, अब हम एक परिवार बन गए हैं और हमारी इच्छा है आज हमारा पूरा परिवार एक साथ खाना खाए। डैड सही कह रहे हैं, डिनर का टाइम हो गया है, तो अब आप दोनों डिनर करके ही जाइएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिस्टर शेरगिल ने भी दादाजी का साथ दिया। अनीता जी अब कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन अब भी वो पूरी तरह सहज नहीं लग रही थी। जब तक डिनर बनता है कुछ बातें हो जाएंगी और बच्चों को भी साथ में थोड़ा वक्त मिल जाएगा, दादाजी ने नित्य और मानव को देखते हुए कहा। दोनों ही बिल्कुल शांत थे, इतनी देर में उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। मानव का तो नेचर ही ऐसा था, वो शांत ही रहता था और यहाँ बड़े मौजूद थे तो लिहाज कर रहा था, लेकिन नित्या ऐसी नहीं थी, उसकी चुप्पी नॉर्मल नहीं थी। अनीता जी ने भी उन दोनों को देखा, फिर सर हिलाते हुए बोली, अगर आप सब यही चाहते हैं तो हम आपकी बात कैसे काट सकते हैं। नित्या, जाओ बेटा तुम कपड़े बदल लो और मानव को भी अपने साथ लेकर जाओ, वो भी आपका रूम देख लेंगे। डिनर तैयार हो जाएगा तो हम आप दोनों को बुला लेंगे। दादाजी ने मानव को आंखों से कुछ इशारा किया और उसने उनकी बात समझते हुए सर हिला दिया। सब समझ रहे थे कि दादाजी ने ऐसा क्यों कहा, वो क्या करना चाहते हैं, इसलिए किसी ने उन्हें रोका भी नहीं। नित्या बेटा जाओ तुम चेंज कर लो और मानव को भी अपना रूम दिखा देना, मिस्टर शेरगिल ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए दादाजी की बात दोहराई। नित्या जो सर झुकाए बैठी थी उसने धीरे से गर्दन हिला दी, अपने गाउन को संभालते हुए उठकर खड़ी हो गई। मिस्टर शेरगिल मानव के पास आ गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए तल्ख लहजे में बोले, नित्या के साथ जाओ और याद रहे जब वापस नीचे आओ तो मुझे मेरी बेटी के चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। मौका दे रहा हूँ तुम्हें, जाओ जाकर बात करो उससे। सुबह से वो बहुत खुश और एक्साइटेड थी, लेकिन अब इसकी आंखों में वो चमक नहीं है। ऐसा क्यों है ये तुम्हें पता लगाना है और उसकी उदासी की जो भी वजह है उसे दूर करना है। अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहे तो मुझे इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। आवाज धीमी थी जो कोई और नहीं सुन सका, लेकिन अंदाज धमकी भरा था। मानव फटी फटी आंखों से हैरान परेशान सा उन्हें देखने लगा।
ससुर और दामाद में क्या बातें हो रही हैं? जो भी बात हो रही है वो बाद में करना, अभी तुम हमारे साथ चलो और तुम नित्या के साथ जाओ। दादाजी दोनों के एक्सप्रेशन देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनके बीच आ गए। उन्होंने मिस्टर शेरगिल को अपनी तरफ किया और मानव को नित्या के साथ जाने का इशारा कर दिया। मानव ने सर हिलाया, दो कदम आगे बढ़ा, फिर रुका और पलटकर देखा तो मिस्टर शेरगिल वार्निंग भरी नज़रों से उसे ही घूर रहे थे। टू बी कंटिन्यूड।